ये आवाज है 27 सालों तक चीन के प्रधानमंत्री या प्रीमियर रहे चाउ एन लाई की, जिन्हें उनके खूबसूरत चेहरे, वाक्पटुता और कूटनीतिक समझ के लिए न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया में याद किया जाता है। चीन की राजनीति के कीचड़ में वो शायद अकेले शख्स हैं जो बेदाग निकलने में सफल हुए हैं। उनकी सुसंस्कृत और शालीन छवि इसलिए भी उभर कर सामने आती है क्योंकि उनकी तुलना अक्सर उनके नेता माओ से तुंग से की जाती थी, जो हमेशा अपने आप को सुर्खियों में लाने और चीन की अनवरत उथल पुथल का श्रेय लेने के लिए लालायित रहते थे। भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह कहते हैं,
इसके बराबर दुनिया में 20वीं सदी में कोई डिप्लोमेट नहीं हुआ है। करिश्मा तो था ही खैर उनमें और लॉन्ग मार्च में रहे थे, मगर उनका पब्लिक रिलेशंस और कूटनीति में जो उनकी समझ थी और किसी में नहीं थी।
लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र में चाउ एन लाई का राजनीतिक करियर पूरी तरह से दोष मुक्त नहीं था। उनके एक जीवनीकार गाओ वेन क्विन लिखते हैं,
चाउ दीवार में एक मामूली दरार ढूंढने में निपुण थे जिससे वो लोगों को भरमा सकें कि वो अपने फैसले लेने में तटस्थ हैं। असल में वो माओ के वफादार कुत्ते की तरह हमेशा उनके पीछे चलते हैं और अपनी खाल बचाने के लिए अनर्गल प्रलाप का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकते। उनका राजनीतिक अस्तित्व इसलिए भी बना रहा क्योंकि उन्होंने माओ की अधीनता को बिना किसी हील हुज्जत के स्वीकार किया। वो हमेशा माओ के अभिन्न सहायक रहे, लेकिन उन्होंने उनका हमेशा तिरस्कार किया। उन्होंने कभी भी कोई राजनीतिक जोखिम नहीं उठाया, इसलिए वो हमेशा माओ के नंबर दो बनकर रहे।
भारत के विदेश मंत्रालय में सचिव और 70 के दशक में चीन में भारत के शार्डी अफेयर्स रहे लखनलाल मेहरोत्रा को 1955 में चाउ एन लाई से मिलने का मौका मिला था, जब वो एक भारतीय छात्र प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में चीन गए थे।
मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था। उस वक्त एक नोटिस मिला हमको कि पहला कल्चरल डेलीगेशन विद्यार्थियों और अध्यापकों का भारत से चीन जाने वाला है, जो कि उनके प्रथम अक्टूबर के पूरे समारोह में भाग लेगा। उसमें 3 व्यक्ति छांटे गए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और बाकी कुल मिलाकर के 10 विश्वविद्यालय थे, जिनसे एक एक प्रोफेसर और 2-2 विद्यार्थी चुने गए। जब हम चीन पहुँचे तो पीकिंग होटल में हम लोगों को रखा गया। पहले दिन जब हम लोग शाम को भोजन करने के लिए नीचे आए तो करीब 25-30 डेलीगेशन और उसी होटल में रोके गए थे। वो सब के सब खाना खाने उसी वक्त आए हुए थे। तो चाउ एन लाई आए और वो आकर के हम लोगों की मेज़ पे बैठ गए और उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप लोग में से कितने वेजिटेरियन हैं। तो हमने बताया काफ़ी लोग जो थे वो गोश्त नहीं खाते थे। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को खाना संतोषजनक मिल रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि साहब नहीं, अभी तो ज़रा इंतज़ाम कम है। उसका नतीजा ये हुआ कि हम जहाँ जहाँ भी गए उसके बाद, 3 हफ्ते रहे चीन, जगह जगह हम लोग गए और हमें सारी जगह वेजिटेरियन बड़ा बढ़िया खाना मिला। लुक एट हिज इंटरेस्ट, मतलब ये कि उनको इस बात का ख्याल था।
अगले दिन यानी 1 अक्टूबर को जब परेड हुई तो उन्हें चीन के शीर्ष नेताओं के बॉक्स में ले जाया गया, जहां चाउ एन लाई ने उन्हें खुद माओ से तुंग से मिलवाया था।
करीब 110 से 115 डेलीगेशन आए हुए थे चीन और वो सब एक के बाद एक टियानमेन स्क्वायर में एक के आगे जा रहे थे और जो फॉरबिडन सिटी है उसके रैम्पर्ट्स पे, जो उसकी मेन आर्च है उसके ऊपर माओ ज़ेडुंग, चाउ एन लाई और सारी पोलिट ब्यूरो इकट्ठा थी और वो सैल्यूट लेते चले जा रहे थे और वेव करते चले जा रहे थे। हम लोगों का जब डेलीगेशन वहाँ से गुजरा तो उनका जो मिलिट्री वाले जो रेगुलेट कर रहे थे, उन लोगों ने हमसे कहा कि आप लोग अलग आ जाइए। हम लोग बिल्कुल अलग ले जाए गए, फॉरबिडन सिटी के अंदर गए, ऊपर ले जाया गया और चाउ एन लाई ने हमको माओ ज़ेडुंग से मिलाया। और फिर उन्होंने कहा कि भाई ये 1954 का जो हम लोगों का समझौता है वो बहुत उम्दा चीज़ है और हम उसका स्वागत करते हैं और ये हम दोनों देशों को हमेशा बराबर नज़दीक रखेगा।
उनकी इन्हीं खूबियों की वजह से दुनिया भर के पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक उनके मुरीद थे। मशहूर पत्रकार जैक एंडरसन ने अपनी किताब कन्फेशन ऑफ ए मक रेकर में लिखा था।
मेरे जहन में चौ इनलाई की जो याद बरकरार है वो है 45 साल की उम्र में भी उनका खूबसूरत चेहरा और गजब की बुद्धिमत्ता। वो दुबले पतले जरूर थे लेकिन बेहद मेहनती भी थे। उनका जीवन बहुत सादा था लेकिन वो बहुत ही सजीले इंसान थे। उनके उठने बैठने का ढंग बहुत खुशनुमा था। अंग्रेजी, फ्रेंच और चीनी भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। अमरीकी विदेश विभाग के सुदूर पूर्व विशेषज्ञ वॉल्टर रॉबर्टसन ने उनके बारे में एक बार कहा था कि उनके जैसा मनमोहक, अक्लमंद और आकर्षक इंसान किसी भी प्रजाति में मिलना बहुत मुश्किल था।
1960 में चौ इनलाई भारत आए थे। ये 1962 का युद्ध टालने की उनकी तरफ से आखिरी कोशिश थी, लेकिन नेहरू से उनकी बातचीत असफल रही। नेहरू ने कहा कि मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य भारत का पक्ष रखने के लिए आपसे मुलाकात करेंगे। चौ इनलाई ने जवाब दिया कि उन मंत्रियों से मिलने मैं खुद उनके पास जाऊंगा। उस यात्रा में पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह चौ इनलाई के लियाजा ऑफिसर थे।
जब मिलने गए थे वाइस प्रेसिडेंट राधाकृष्णन से, होम मिनिस्टर पंडित पंत से, मोरारजी देसाई से, तो उनके साथ था मैं। जब वो जवाहरलाल जी और चौनलाई मिल रहे थे तो कोई नहीं था। एक तो उनका इंटरप्रेटर चाइनीज़ का और एक हमारा था। पर मैंने बाद में कागज़ वागज देखे, पर चौनलाई की मीटिंग मोरारजी देसाई से तो बहुत डिजास्टर था बिल्कुल। और वाइस प्रेसिडेंट से भी कोई ठीक नहीं। पंत जी से करीब करीब ठीक हो गई, मगर वो ऐसी बातें थी कि एक दिन कार्टून आया जिसमें उनको चौनलाई को देखा कि वो कोबरा है। दूसरे ने आया कि साहब ये बेशर हमें हंस रहे हैं। उनने मुझसे पूछा कारण में कि ये व्हाई इज दिस हैपनिंग, दे क्रिटिसाइज, दे डू दिस टू जवाहरलाल नेहरू आल्सो, डू यू थिंक इट्स राइट थिंग टू डू। मैं क्या कहता, कुछ नहीं कहता। सो एनीवे होता ही गया, बस इट वाज डाउन हिल ऑल द वे। और उस वक्त तक द इनिशिएटिव फॉर गोइंग टू पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर वाज ऑन द बैक फुट। जहाँ तक मुझे लगा कि चौनलाई फैसला करने के लिए आए थे, उन्होंने ये था कि भाई अक्साई चिन्ह तो हम आपको देंगे नहीं, मैकमोहन लायम को हम नहीं क्रॉस करेंगे, मगर अब नहीं हो सकता, वो तो चुक गए।
उसी यात्रा के दौरान चीनी दूतावास से राष्ट्रपति भवन आते समय राजपथ पर चौ इनलाई की कार खराब हो गई और उन्हें सड़क पर उतरकर दूसरी कार का इंतजार करना पड़ा।
यहाँ रात को चाइना एम्बेसी वापस आ रहे थे, एक खराब हुई, दूसरी भी हो गई, फिर तीसरी मंगाया। चौनलाई तो परेशान नहीं थे, पर हम लोग परेशान थे। और रामजी काव जो थे रॉ के हेड, वो सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनके साथ, तो मैं वो बैठते थे सामने की जो, मैं बैठता इनके साथ चौनलाई। मैं सोचा तो होगा कि भाई इनके बड़ा फटीचर मुल्क है, इनकी गाड़ियाँ भी नहीं चलती इतने, और हम इतने लेवल पे हैं, पर दिखाया नहीं बिल्कुल।
लेकिन 1973 आते आते चौ इनलाई का भारत के प्रति रुख या तो पूरी तरह बदल चुका था या फिर उसकी शुरुआत हो चुकी थी। उस समय चीन में भारत के शाडी अफेयर्स लखनलाल मेहरोत्रा एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं।
भुट्टो विजिट पर आ रहे हैं, चौ इनलाई एयरपोर्ट पर उनको लेने जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे हम सब लोग रीति के अनुसार इकट्ठा हैं, जितने भी हेड्स ऑफ मिशंस थे। चौ इनलाई गए, उन्होंने सारे इंतजाम देखे। भुट्टो 5-7 मिनट में उनका प्लेन आने वाला है, और फिर वो हम सब लोगों से हाथ मिला के चौ इनलाई प्लेन के नज़दीक पहुंच गए। वहां से वो लौट के आए पीछे की तरफ से, और उन्होंने मेरे गर्दन पे और कंधे पे टैप किया और मुझसे कहा, मिस्टर शाजिद अफेयर्स, प्लीज़ टेल इंदिरा एवरीथिंग विल बी फाइन। नाउ टू थिंग्स वेर इम्पॉर्टेंट, ही यूज द वर्ड इंदिरा, नॉट योर प्राइम मिनिस्टर। देर वॉज अ लॉट ऑफ अफेक्शन इन्वॉल्व इन दिस। He was remembering the old days when he used to meet Nehru, and Indiraji was almost always with him in such matters. Hua ye ki usme thodi gadbad ho gayi. Chu and Lai ne raat ko banquet diya, state banquet hoti hai, wo banquet hall of the people mein 2000 log aate hain, sare heads of missions hote hain. Chu and Lai ki tabiyat kharab ho gayi. Deng Xiaoping aaye unki jagah, unhone statement padha. उस स्टेटमेंट में उन्होंने बात की सेल्फ डिटर्मिनेशन इन कश्मीर, आई हैड टू वॉक आउट, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट हो चुका था, वो बायलैटरल मैटर था। वी डिडंट वांट एनी कंट्री टू पोक इट्स नोज इन द मैटर, एंड देयर वाज अ मैटर ऑफ कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
और ये जो फैसला था वॉकआउट करने का, ये पहले से तय था या इस पर ऑफ द मोमेंट पे आपने?
एट द मोमेंट बिल्कुल पता ही नहीं था कि ये करने जा रहे हैं। लेकिन वो संभाल दिया गया। अगले दिन जब भुट्टो ने चुअन लाई के ऑनर में अपनी बैंक्वेट दी तो देर वॉज नो यूज ऑफ द वर्ड सेल्फ डिटर्मिनेशन, नो सच थिंग वॉज डन। ऑन द अदर हैंड, वेदर इट वॉज प्रॉम्प्टेड बाई द चाइनीज और ऑन हिज ओन, भुट्टो केम टू अस एंड सेड कि भाई आप लोग क्यों बाहर चले गए कल। मेरी वाइफ से उन्होंने कहा कि मैं तो समझा कि आप टॉयलेट जा रहे हैं दोनों के दोनों, तो उस बाय वाइफ उन्होंने जवाब दिया शीला ने कि जनाब हमारे यहाँ तो कभी दो लोग मर्द और औरत साथ जाते नहीं है टॉयलेट, एंड दिस वाज फ्लैश ऑल ओवर। बिफोर हिज डेथ मंथ्स लेटर इन जनवरी 1976 Chu and Lai had made certain that we initial the agreement for exchange of full-fledged ambassadors. Hum the head of the mission, lekin charge the affairs kehlate the.
Phir Narayanan ko
bheja. Phir Narayanan saab ko bheja gaya, aur wo agreement Chu and Lai ke zamane mein sign hua, aur maine usko initial kiya.
Isse pehle 1971 mein Amerikki videsh mantri Henry Kissinger Chu and Lai se milne gupt roop se Beijing gaye the. इस यात्रा ने किसी अमरीकी राष्ट्रपति की पहली चीन यात्रा की पृष्ठभूमि तैयार की थी। बाद में हेनरी किसिंजर ने अपनी आत्मकथा द व्हाइट हाउस ईयर्स में लिखा।
जब मैं चाउ से पहली बार 1971 में मिला था तब तक उन्हें चीनी कम्युनिस्ट आंदोलन का नेता बने करीब 50 साल हो चुके थे। चाहे दर्शन हो या ऐतिहासिक विश्लेषण, राजनीतिक परख, संस्मरण या हाजिर जवाबी, सब पर उनकी बराबर की पकड़ थी। अमरीकी मामलों, तथ्यों और मेरी खुद की पृष्ठभूमि के बारे में उनकी जानकारी अद्भुत थी। वो अपना एक भी शब्द जाया नहीं करते थे और ये जाहिर करता है कि वो कितने सुलझे हुए इंसान थे।
1975 आते आते चवन लाई गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें पेट का कैंसर हो गया। आखिरी बार वो अस्पताल से बाल कटवाने अपने नाई जू दिन हुआ के पास गए। उन्होंने जू से कहा चलो मेरे साथ तस्वीर खिंचवाओ, लेकिन वहां कोई फोटोग्राफर मौजूद नहीं था। 3 महीने बाद जू ने उन्हें संदेश भिजवाया, क्या मैं प्रधानमंत्री के बाल काटने आ सकता हूं? चाउ एन लाई ने कहा उसको यहां मत आने दो, मुझे इस हाल में देखकर उसका दिल टूट जाएगा। 8 जनवरी 1976 को सुबह 9:25 पर चाउ एन लाई ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।